तो देखो तुम्हारा काम क्या है कि देवकी के गर्भ में जो मेरी शक्ति है, जो मेरा स्वरूप विराजमान है, उस स्वरूप को देवकी के वहां से खींच करके और रोहिणी के उदर में ले जाकर रख दो। ये तुम्हें काम करना है। और तुम स्वयं यहां से जाकर के यशोदा जी के यहां जन्म ले। तुम्हारी लोग बहुत पूजा करेंगे, तुम्हारे तरह तरह के नाम होंगे, दुर्गा है, भद्रकाली है, विजया है, वैष्णवी है, नारायणी है, चंडिका है, कुमुदा है, माधवी है, नारायणानी है, नारायणी है, ईशानी है, शारदा है, अंबिका है। इन सब नामों से दुनिया तुम्हारी बहुत पूजा करेगी, इतनी पूजा करेगी कि उस पूजा को लेकर के तुम बड़ी प्रसन्न हो जाओगी। और देवकी के गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में रखोगे तो उस गर्भस्थ बालक का नाम संकर्षण होगा। संकर्षण माने खींचने वाला, तो वो प्रारंभ से ही खींचने वाला, जब वो देवकी के उदर में गया तब से वो रोहिणी के उदर में चला जाएगा, तो खींचने का काम तो वो पहले से ही हो रहा है, इसलिए उसको संकर्षण कहेंगे। और लोगों को बहुत आनंदित करेगा, इसलिए उसका नाम राम रहेगा। और बल में सबसे श्रेष्ठ होगा, इसलिए उसको बल बोलेंगे, बलराम संकर्षण सब उसी का नाम होगा। ऐसा योग माया को आदेश दे दिया। योग माया ने कहा बहुत अच्छी बात है। योग माया वहां से रवाना हो गई। और इधर गर्भे प्रणीते देवक्या, देवकी का गर्भ था वो, वहां से खींच करके रोहिणी में चला गया। स्वयं देवकी को भी पता नहीं चला कि मेरे गर्भ का क्या हुआ। इधर कंस को जाकर के कहा कि महाराज कोई एक बालक जन्म लेने वाला था, उसका बालक पहले से ही नष्ट हो गया है। सबको पता चल गया कि सातवां बेटा देवकी का नष्ट हो चुका है। इधर भक्तों के मन को आनंदित करने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अपने दिव्य अति दिव्य और महादिव्य रूप से जहां कंस के जेल खाने में वसुदेव जी और देवकी विराजमान थे वहां उनके सामने प्रकट हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सर्वप्रथम भगवान वसुदेव जी के मन में आए। उस समय में जो ही मन में भगवान आविर्भूत हुए, भगवान ने दर्शन दिए, देव वसुदेव जी का चेहरा और का और हो गया। वसुदेव जी देदीप्यमान हो गए। उस समय में दुरासदो अति दुर्धर्ष है, वसुदेव जी को कोई देख न सके, ऐसे वसुदेव जी की कांति फैल गई। और क्या बतावे, वे ही ये देवकी जी उस समय में इतनी श्रेष्ठ हुई जैसे कोई पूर्व दिशा है वो चंद्रमा को धारण करने से श्रेष्ठ होती है, ऐसे देवकी की शोभा बढ़ गई। कहते हैं देवकी जी के यहां गर्भ में भगवान पधारे, वसुदेव जी के मन में भगवान पधारे। उस समय में पता चला कि अब ये देवकी का आठवां गर्भ है, देवकी का आठवां गर्भ है। ये बात देखी सुनी कंस ने देखा कि बालक पैदा हो उसके बाद क्या मारे, पहले गर्भ में ही मार देंगे। वो कंस है अपने तमतमाए हुए चेहरे से वहां आया जेल खाने में, हाथ में तलवार लिए हुए। प्रभया जितांतराम विरोचयंतिम भुवनम सुतिस्मिताम, जो ही कंस वहां आया और जो ही देवकी के दर्शन किए कि ये आठवां गर्भ यही है, तो कंस के भाव ही बदल गए। आहा बहुत ध्यान देवे हो, जो कंस मारने के लिए आया था उस कंस ने जो ही देवकी के वसुदेव के दर्शन किए, मन में विचार आया कि ओहो मर करके तो मुझे कर्मों का जवाब तो देना ही पड़ेगा, ये मैं क्या करने जा रहा हूं, मेरे बहन के बेटों को मैं मार रहा हूं, इतना पापी। मनुष्य है वो यश के कारण से जीवित रहता है, अपयश के कारण से जीते जी मर जाता है, और यश के कारण से हजारों लाखों वर्षों तक जीवित रहता है। मैं ये क्या पाप करने लगा हूं, एक तो ये स्त्री है, एक ये गर्भवती है, और इसको मैंने मारने का पाप किया, बड़ा भारी मैंने पाप किया है। सएष जीवन खलु संपरे, तो मुझे मेरे कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ेगा। देहे मृतेतम मनुजा सपंती, मरने के बाद लोग मेरे नाम को ले लेकर गालियां निकालेंगे और मैं नरकों में पड़ूंगा। जब तक इस संसार में निंदा रहती है किसी मनुष्य की, तब तक वो मनुष्य नरकों में पड़ा रहता है। इस कारण से इतने लंबे समय तक मुझे नरक भोगना पड़ेगा, राम राम राम, मैं अब ऐसा पाप नहीं करूंगा। वो बड़े घोर उस पाप का फल जान करके कंस वहां से निवृत्त हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखा भगवान का प्रभाव, अभी तो वो गर्भ में ही आए हैं, इतने मात्र से उसका भाव था कंस का बदल गया और वो वापिस अपने महल में चला गया। अब वो उठते बैठते चलते फिरते हर दम यही चिंता करता था क्या करूं, आठवां बालक गर्भ में है, बहन को मारूं या बालक को मारूं या किसी को ही नहीं मारूं, क्या करूं? वो कुछ किसी प्रकार से एक जगह पर पहुंचा नहीं। जो भी हो, परीक्षित कंस का तो भला हो गया। क्यों? कि चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत, और वे तन्मय होकर के माने सब जगह देवकी का आठवां गर्भ है, देवकी का आठवां गर्भ है, वो मुझे मारने वाला है, कोई परमेश्वर है, कोई विष्णु है, सब जगह विष्णुमय विष्णुमय जगत को देखने लग गया, ऐसी उसकी वृत्ति हो गई। इधर ब्रह्मा है, शंकर है, वो कई देवताओं के साथ में, नारद आदि ऋषियों के साथ में कंस के कारागृह में आए, आकर के देवकी के उदर में विराजमान जो भगवान है उनकी स्तुति करने लगे। कहने लगे, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितं च सत्य सत्य से सत्य सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। हे प्रभु, आपका व्रत सत्य है, प्रतिज्ञा आपकी सत्य है, आप सत्य परायण है, त्रिकाल में आप सत्य है, और जो दिखाई देने वाला जगत है, कार्य कारणात्मक जगत है, इसके आप महान कारण है, और ये सारा का सारा जगत आप में लीन होने वाला है, इसलिए इस जगत में यदि कोई सत्य वस्तु है तो केवल आप ही है, इसलिए सत्य स्वरूप हम आपकी शरण में हैं। और ये संसार तो महाराज एक वृक्ष के समान है, जहां क्या बतावे, एकाए नौ सौ एक घोंसला है, माने प्रकृति एक घोंसले के समान, सुख और दुख है ये इसके दो फल है, तीनों गुण है वो इसके मूल है माने जड़े है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष है ये वृक्ष में रस है, पांच ज्ञानेन्द्रियां है ये इसकी त्वचा है, पांच ज्ञानेन्द्रियां ये पांच टहनियां है, और मांस आदि ये सात जो धातुएं हैं ये इसकी त्वचा है, और नौ जो इन नौ दरवाजे हैं वो नौ दरवाजे इसके छिद्र हैं, और दस प्रकार के प्राण हैं वो इसमें पत्ते हैं, और ईश्वर और जीव दो इसके पक्षी हैं, इस वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं। आप सारे संसार के महाकारण हैं, तरह तरह का रूप आप धारण करते हैं, आप संतों को आनंदित करते हैं, दुष्टों का आप संहार करते हैं। महाराज, बड़े बड़े समाधियों के द्वारा चित्त को लगा देना ये बहुत कम लोगों के बस की बात है, लेकिन आपकी पावन कथाओं को सुन लेना सबके लिए बड़ी सहज बात है। ऐसा ही विचार करके आप लोगों को समाधि के चक्कर से हटाकर बहुत जल्दी ही अपने रूप के अंदर डुबाकर कल्याण करने के लिए ही आप अवतार लेते हैं। ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिन है, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं हे कमल नेत्र, वो न जाने कितने कितने साधन करते हैं जिससे उनके सामने बड़ी भारी बाधाएं आती हैं, और वे बार बार आपके चरणों का सहारा न लेने के कारण से अपने साधन से गिर जाते हैं, लेकिन हे माधव, जो आपके भक्त होते हैं उनसे आगे पीछे कैसे ही पूछ लो, एक ही बात कहेंगे, भाई भगवान का आसरा है, सांवरिया का आसरा है, भगवान का आश्रय है, ऐसा जो कहने वाले लोग हैं वे आपके अंदर ऐसी पक्की मित्रता कर लेते हैं कि कितने ही जान जान करके उनके सामने विघ्नराज उपस्थित क्यों न आ जाए, वे विघ्नों के सिर के ऊपर पैर रख करके आराम से आपको प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी आपकी महिमा है। महाराज, यदि आप सगुण रूप से अवतार न लेवे तो लोगों की बड़ी दुर्दशा हो जाए। क्यों? कि न तो वो वेद का तात्पर्य समझ सकते हैं, और न वे निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में अपनी वृत्ति लगा सकते हैं। अरे वृत्ति तो संसार को पकड़ सकती है, वृत्ति अपने प्रकाशक के वहां पर पहुंचने में असमर्थ है, इसलिए लोगों की वृत्ति के अंदर भी आप आ जाए, इतनी सुगमता के लिए आपने अवतार लिया है। आपके गुणों से, आपके जन्मों से, आपके कर्मों से कोई आपका वास्तविक रूप समझ में नहीं आता है, परंतु फिर भी और कोई जानने का उपाय नहीं है। उन कथाओं में जो एक आनंद आता है, आपका यश सुनते हुए एक मन हरा भरा होता है, तब लोगों को पता चलता है कि ओहो, भगवत प्राप्ति का एक विलक्षण सुख है। इसलिए शिन्वन गृणन संस्मरयंश्च चिंतयन नामानि रूपाणि च मंगलानि, आपके कथाओं को सुने, गावे, चिंतन करें, आपके नाम और रूप का उच्चारण करें, रूप का ध्यान करें, आपके लिए कर्मों को अर्पित करें, ऐसे व्यक्ति संसार में कभी नहीं आते हैं, ये हम सब का मत है। बड़ी कृपा की महाराज, अब आपने यहाँ अवतार लिया है, तरह तरह से आप लीलाएं करेंगे, आप तो जमीन पर लीलाएं करेंगे और हम लोग आकाश में उन लीलाओं को देखते रहेंगे। हे प्रभु, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके पीछे पीछे हम भी रहेंगे। आपकी लीलाओं को देखने में और आपकी लीलाओं को सुनने में इस जीव का महान कल्याण है। भवो निरोध है स्थितरप्य विद्यया कृता यतस्वय अभयाश्रयात्मनि नते अभवस्ये स भवस्य कारणम बिना विनोदम बत तर्कयामहे। कोई पूछे कि भगवान का अवतार क्यों होता है? कि दुष्टों का संहार करने के लिए। हम नहीं मानते, दुष्टों का संहार तो आपकी एक स्फुरना मात्र से हो सकता है। आप अवतार क्यों लेते हैं? आप अवतार इसीलिए लेते हैं ज्ञानियों का, ज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए। ना ज्ञानियों को क्या ज्ञान देंगे महाराज, ज्ञानी तो वैसे ही मुक्त है। आप अवतार इसलिए लेते हैं कि बेचारे रात दिन घर गृहस्थ के चक्र में पड़े हैं और उद्धार का कोई उपाय जानते नहीं है। ऐसे लोगों का भी सुगमता से धक्के से जैसे तैसे उद्धार हो जाए, इसलिए आप अवतार लेते हैं। मत्स्यास्व कच्छपन नृसिंह वराह हंस, आपको महाराज कहीं शर्म नहीं आती। मछली आप बन जाए, आप घोड़ा आप बन जाए, और तो और आप कछुआ आप बन जाए, नृसिंह आप बन जाए, सुअर आप बन जाए, हंस आप बन जाए, आपको कहीं पर भी शर्म नहीं आती है। क्यों शर्म क्यों आवे? बाप को क्या अपने बच्चे के सामने घोड़ा बनते हुए शर्म आती है कि ले बेटा मैं घोड़ा हूं तू ऊपर बैठ, शर्म आती है? नहीं आती। इसी प्रकार से आपको घोड़े बनने में शर्म नहीं आती। आप तो बच्चों को खिलाने के लिए क्या नहीं बन जाए, इसलिए लोगों को आनंदित करने के लिए आप अवतार लेते हैं। अब महाराज पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा और हम लोगों को महान आनंद का अनुभव होगा। हे देवकी, जितना तुमने कष्ट उठाया है वो कष्ट तुम्हारा इसके अवतार लेने के बाद ऐसा दूर हो जाएगा कि वो कष्ट तुम्हारी याद ही नहीं रहेगा। बड़ी भाग्यशालिनी हो देवकी, हम तुमको प्रणाम करते हैं कि जिनके उदर में साक्षात भगवान विराजमान है। इस प्रकार से स्तुति करके ब्रह्मा जी चले गए, देवता लोग भी चले गए। आहा, अब एक बहुत सुंदर समय आया, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी का समय है। सब प्रकार से वह समय श्रेष्ठ है, सर्व गुणों पे तय। न तो बहुत बड़ी गर्मी है, न कोई बहुत ज्यादा सर्दी है, मौसम की दृष्टि से भी बड़ा अच्छा है और बड़ा सुहावना, भिना भिना वर्षा से भरा हुआ, मधुर मधुर छांटे गिर रही है, बरसात हो रही है। ऐसे समय में भगवान ने जन्म लिया है। कहते हैं उस समय में सारे नक्षत्रों में शांति है, दिशाएं स्वाभाविक रूप से प्रसन्न है, आकाश में प्रसन्नता छा रही है, पृथ्वी सब प्रकार से मंगलों का खजाना बनी हुई है, नदियों का जल बड़ी प्रसन्नता से कलकल करते हुए बह रहा है और कुमुदनिया अपने आप हर्षित हो गई है और मंद मंद वायु से हिल रही है, सब जगह सुगंधी बिखेर रही है और भौरे है अपनी नींद को छोड़ करके और उन फूलों के ऊपर बहुत सुंदर नाद कर रहे हैं। बहुत सुंदर सुखद स्पर्श वाला वायु बह रहा है, वायु में बड़ी सुंदर सुगंध है और द्विजातियों की जो अग्नियां हैं उस समय में शांता स्तत्र समिंदता, कहते हैं कि बड़ी शांत है, उनके अंदर इतनी गर्मी नहीं है। लोगों के न जाने क्या है, स्वाभाविक ही प्रसन्नता हो रही, पता नहीं क्या होने वाला, अपने आप प्रसन्नता हो रही है। और न जाने क्यों इस समय में असुरों के मन में भय छा रहा है और इस प्रकार से अपने आप ही स्वतः ही देवताओं की दुंदुभियां बज उठी हैं। ऐसा समय है, विद्याधरियां नाच रही हैं, अप्सराएं गा रही हैं, सिद्ध और चारण उस समय में स्तुति कर रहे हैं, ऋषि मुनियों का मन आनंद से खिला हुआ है, मंद मंद करके आकाश में गर्जना हो रही है। ऐसे समय में रात्रि के ठीक रात्रि के मध्य समय में देवकी और वसुदेव जी के सामने भगवान ने अपना दिव्याति दिव्य चतुर्भुज रूप था वो प्रकट किया। बोलिए आनंद कंद भगवान, बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। उस समय में भगवान की चार भुजा है, शंख चक्र गदा पद्म भगवान ने धारण किए हैं और छोटा सा भगवान का रूप है, पीताम्बर उन्होंने पहन रखा है, वर्षाकालीन मेघ के समान भगवान श्याम वर्ण वाले है, कौस्तुभ मणि गले में विराजमान है, श्रीवत्स का चिन्ह है और महान मूल्यवान वैदूर्य मणियों से जटित उनका क्रीट और कुंडल सुशोभित हो रहा है और परिस्वक्त सहस्र कुंतलम और उनके जो केश है घुंघरालू घुंघरालू केश, कितनी प्रकार से वे मुड़े हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं और उनके हाथों में और चरणों में जो आभूषण है उनके दूर दूर तक कांति फैल रही है। ऐसे दिव्य स्वरूप को वसुदेव जी महाराज ने अपने सामने देखा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और जो ही भगवान वहां पर प्रकट हुए हैं, भगवान को अपने सामने देखा, उस समय में कृष्णावत उस समय में भगवान के रूप को देख करके और वसुदेव जी महाराज तो एकदम चकित हो गए। उन्होंने आंखें बंद कर ली, भगवान के रूप को अपने हृदय में रख लिया। और उस समय में कृष्णावतारो उत्सव संभ्रमो स्पृशन मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवा, मन ही मन में संकल्प किया गया, ये श्री ये भगवान हमारे यहाँ अवतार ले रहे हैं, बड़ी कृपा है भगवान की। तो ऐसा विचार करके देखा, अभी तो मैं पराधीन हूं, लेकिन ऐसे भगवान के उत्सव में मैं लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों गवों का दान ब्राह्मणों को करूंगा, ऐसे मन में उन्होंने दान का संकल्प किया और फिर हाथ जोड़ करके भी भगवान की स्तुति करने लगे। वसुदेव जी कहने लगे, महाराज हमने तो आज तक यही सुना है कि आप प्रकृति और प्रकृति के कार्यों से परे हैं, आप एक आनंद स्वरूप हैं, संपूर्ण बुद्धियों के आप साक्षी हैं और संपूर्ण त्रिलोकी से आप परे हैं, आपने प्रकृति के माध्यम से संसार को बनाया है, बना करके आप इसमें प्रवेश करने की लीला करते हैं, फिर भी आप इसके अलग के अलग हैं, प्रवेश भी करते हैं फिर भी आप अलग हैं। जैसे हम लोग हमारे घर में रहते भी हैं लेकिन घर से बाहर भी रहते हैं, ऐसे ही है प्रभु, आप संसार में रहते भी हैं और संसार से बाहर भी रहते हैं। जिस प्रकार से प्रकृति के जितने विकार हैं ये आपस में जब तक नहीं मिले थे तब तक इस संसार को नहीं बनाए थे, और जब ये आपस में मिल गए तब उन्होंने संसार को बनाया। ऐसा लगता है कि मानो वे कोई संसार में नए ढंग से आए होंगे, नहीं, ये तो पहले से ही विद्यमान थे, प्राकृतिक तत्व मिल गए उससे पहले भी थे और मिल जाने के बाद भी हैं। इसी प्रकार से बुद्धि आदि के द्वारा लक्षणों का अनुमान होता है, इंद्रियों के द्वारा केवल संसार का ज्ञान होता है, आप गुणों के अंदर नहीं है कि गुणों के ज्ञान से आपका ज्ञान हो जाएगा, आप विषयों के अंदर नहीं है कि विषय के ज्ञान से आपका ज्ञान हो जाएगा, आप विषय के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। जब तक जीव की विषय पर दृष्टि है तब तक आपका ज्ञान नहीं होता, और जब आपके इस ज्ञान इससे विषय से दृष्टि हटती है तभी आपका ज्ञान होता है। आप संपूर्ण दृश्य गुणों में रहते हुए भी आप इनसे अलग के अलग हैं, आप संसार को पैदा करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, इतना सब करते हुए भी आप में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शुक्ल रूप से आप संसार का पालन करते हैं और लाल माने रजोगुण को लेकर के आप संसार को पैदा करते हैं, और कृष्ण रूप से आप इस संसार को अपने में समेट लेते हैं। आहा, हे अखिलेश्वर, कितनी आपने मेरे पर कृपा की है, आप मेरे यहाँ अवतार लिए हैं, अब पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। कंस को पता नहीं है, वो आपको अपना मारने वाला समझ रहा है, उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तभी तो आपसे पहले जो 6 बालक हुए मेरे उन सबको इसने मार दिया था। हे प्रभु, हम तो आपको अपने आप को अर्पित कर रहे हैं। सतेवतारम पुरुषै समर्पितम श्रुत्वा ध्वनैवा विसरत्युदायुधे, अभी अभी वो लोगों के द्वारा सुनेगा कि आपका आविर्भाव हो गया, प्राकट्य हो गया, तो अभी वो दौड़ा दौड़ा आएगा, वो कुबुद्धि है, उसको कुछ भी पता नहीं है। इस प्रकार से वसुदेव जी ने स्तुति की, अब वो देवकी है, अब देखो माँ कैसी सरलता से स्तुति करती है। देवकी जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपका रूप अव्यक्त है, प्रकाशमान है, निर्विकार है, गुणों से अतीत है, नैनी सत्ता मात्र है, जो होना है वही आपका रूप है, निर्विशेष आपका रूप है और अध्यात्म दीप है, ये जो अध्यात्म दीप है, आप अध्यात्म के दीपक हैं। अध्यात्म दीप भागवत में 2 जगह आया, एक तो अध्यात्म दीप आया है भागवत की विशेषता के लिए और एक अध्यात्म दीप आया है भगवान की विशेषता के लिए। भगवान भी अध्यात्म दीप है और भागवत पुराण है ये भी अध्यात्म दीप है। सत्वम साक्षात विष्णु अध्यात्म दीप है, ये ब्रह्मा जी की आयु के साथ सारा संसार नष्ट हो जाता है, उस समय में आप अकेले ही बाकी रहते हैं, अतः आपका नाम शेष है। योयम काल तस्यते अव्यक्त बंधो, और ये काल है ये आपकी चेष्टा है, माने आपकी क्रिया क्या है कि ये जो समय की जो गति है वो आप ही की गति है। मारा सारा का सारा संसार इसी मृत्यु से भयभीत रहता है, उसको कहीं पर भी शांति नहीं मिलती है, आपके चरणों में ही इसको शांति मिलती है। महाराज हम भी क्या बतावें, इस कंस के भय से बहुत भयभीत हो रहे हैं। आपका ये दिव्यादि दिव्य चतुर्भुज रूप है, महाराज जो लोग इस मांस के शरीर में अपना मैपन लगाए हुए हैं उन लोगों को ये शरीर मत दिखाइए, और इनसे ऊपर उठे हुए जो स्वरूप में स्थित है आप उन्हीं को अपना दिव्य रूप दिखाइए, क्योंकि इनकी दृष्टि आपके इस दिव्य रूप को देख नहीं सकती है। आपका ये अवतार महाराज सारे पापों का नाश करने वाला है, फिर भी महाराज इस कंस से मैं बहुत डर रही हूं। महाराज आप अपना ये दिव्य रूप है इसको समेटिए और शंख चक्र गदा पद में श्रिया जुष्टम चतुर्भुजाम इस रूप को आप समेट लीजिए। सारा संसार जिस समय में लीन होता है आप अपने में ही रहते हैं, आप ही सारे संसार को पैदा करते हैं, फिर भी आप कहने के लिए कहेंगे कि मैं देवकी से पैदा हुआ हुआ हूं। महाराज आप जैसा आश्चर्य संसार में दूसरा कोई नहीं है, सबसे बड़े आश्चर्य है तो आप ही हैं। भगवान कहने लगे देखो माता देवकी जी और सुनो आप वसुदेव जी, मैं आप लोगों के यहां आया हूं तो देखो मैं किसी कारण से आया हूं। देवकी जी पहले तो आप तो थी प्रिश्नी और वसुदेव जी थे सुतपा, आप दोनों ने ब्रह्मा जी के आदेश से मेरी प्राप्ति के लिए बड़ा भजन किया था, आपने वर्षा को सहन किया, गर्मी को सहन किया, आपने ठंड को सहन किया, लेकिन आपने भक्ति को जरा सा भी विचलित नहीं होने दिया। एक 12,000 वर्षों तक तुमने तपस्या की, तब मैंने आप लोगों के सामने प्रकट होकर कहा कि मैं तुम्हारे सामने आऊंगा, तो फिर उस समय में मैं प्रश्न गर्भ के रूप में अवतार लिया था तुम्हारे यहां। लेकिन जो कोई भक्त मुझसे मुझे ही मांगता है, मैं एक बार जन्म लेकर के संतुष्ट नहीं होता हूं, मैं बार बार उनका बेटा बनना चाहता हूं। जो कहता है हे प्रभु तुम हमारे बेटा बनो, एक बार बेटा बन गए तब तो बात ही क्या हुई, उन्होंने एक बार तपस्या की और मैं एक बार ही बेटा बन गया, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने बेटा रूप से मुझे चाहा तो मैं एक बार नहीं दो बार नहीं तुम्हारे सामने अब तीसरी बार बेटा होकर आया हूं। पहले मैं वामन रूप से आया और अब मैं यहां कृष्ण रूप से वासुदेव के रूप में यहां तुम्हारे सामने आया हूं। यह मैंने आपको जो रूप दिखाया है यह आपके पूर्व के जन्म के स्मृति के लिए दिखाया है, नहीं तो भाई कोई आदमी इस प्रकार से मेरे स्वरूप को जान थोड़े ही सकता है। अब आप ऐसा करना, युवाम माम पुत्र भावे न ब्रह्म भावे न चा सकृत, आप इस लीला में मुझे जहां तक हो सके पुत्र भाव से स्मरण करना, और कभी 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 आप ब्रह्म भाव से भी स्मरण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको परम गति मिलेगी, मेरा तो अवतार लेना सफल हो जाएगा और आपको जो मुझे मांगना था वो आपका मांगना सफल हो जाएगा। ऐसा कह करके भगवान चुप हो गए। चुप होते ही भगवान अभी चार भुजा से खड़े थे हो तो देखते 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 भगवान वो छोटे से बालक बन गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। वो छोटे से बालक वहां भगवान बने। उस समय में वसुदेव जी ने उनको गोद में उठाया, गोद में उठा करके बड़े प्रेम से छाती से लगाया, छाती से लगा करके, और वे उस बालक को जेल खाने से बाहर ले जाना चाहते हैं। आहा, उधर जो भगवान ने अवतार लिया उधर वो योग माया आ ही गई थी। उस योग माया के प्रभाव से सब अचेतन अवस्था को प्राप्त हो गए, सबको नींद आ गई, और भगवान के पधारने से जितने जेल खाने के किवाड़ थे लोहे के वो खुल गए। देखो भगवान के पधारने से जेल खाने के किवाड़ खुल सकते हैं, तो फिर दिल के किवाड़ों के खोलने के लिए तो किसी प्रकार से कोई भयभीत होने की जरूरत ही नहीं है। तो तयारिता प्रत्यय सर्ववृत्ति सुस्थे सुपोरे स्वभिषाहित स्वत, योग माया के प्रभाव से सबको नींद आ गई पता ही नहीं, भगवान के प्रभाव से सब ताले वगैरह खुल गए, कपाट खुल गए। वसुदेव जी महाराज सब उस भगवान को रूप को लेकर के सब दरवाजों से पार होते होते बाहर निकल गए। कृष्ण वाहे वासुदेवे, कृष्ण का वहन करने वाले वसुदेव जी महाराज जब वे बाहर आए उस समय में क्या बतावे, बादल तो और ज्यादा गरजने लगा। बादल देखता है कि आह जितनी गर्जना कर लो कृष्ण के सामने कर लो, यही हमको समझने वाला। जब कभी भी उपमा दी जाती है तो मेरे से दी जाती है कि घन के समान श्याम वर्ण वाले, और आज वही यहां आ गए तो हमारी उपमा तो इन्होंने बढ़ाई है। प्रसन्नता से तो बादल गर्जना करने लग गए। यमुना नदी के वहां पर गए तो अब यमुना नदी बढ़ी, क्या भाई योगियों को तो इनके चरण हरदम सुलभ है, हमको ये चरण कम मिलेंगे, तो तरंगों के बहाने से वो भगवान के चरणों तक पहुंचते हैं। शेषनाग ने देखा कि आह मेरे यहां तो ये संकर्षण होकर के सोते हैं, नारायण होकर विष्णु होकर रहते हैं, बड़ा पराक्रम दिखा के यहां छोटे से बालक बने हुए हैं, जरा इनकी यह मूर्ति भी हम देखें तो शेष नाग है उनके ऊपर छत्र लगाए हुए है यमुना नदी के अंदर। वसुदेव जी महाराज उस बालक को ले जा रहे हैं, ले जाते भगवान को वे नदी के उस पार ले गए, नंद जी के ब्रज में ले गए। किसी को कोई पता नहीं, सब सोए हुए हैं क्योंकि वहां पर माया विराजमान है, माया के अंदर सबकी नींद बंद रहती ही है, उस समय में जागृति रहती नहीं। यशोदा जी के यहाँ माया ने जन्म लिया। अब यशोदा जी को ये तो मालूम है कि मेरे यहाँ किसी ने जन्म लिया है, पर ये मालूम नहीं है कि बच्चे ने जन्म लिया है कि बच्ची ने जन्म लिया है, यही तो योग माया होगी। तब भगवान को ले जा करके वसुदेव जी ने वहां पर उस बालक को रख दिया, भगवान को वहां यशोदा जी के पास में रख दिया और वो योग माया थी उसको उठा करके वे ले आए। और जब वे लेकर के वहां पर आए तो ला करके वो अपने उसमें जेल खाने में आए, तो लाने जो ही एक एक दरवाजे के अंदर घुसने लगे तो माया के आरण से तो भाई साहब दिल के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो जिस दरवाजे से आ गए अंदर वो दरवाजा अपने आप बंद हो गए, ताले लग गए, अपने आप बंद हो गए, ताले लग गए, साहब बंद हो गए। और वसुदेव जी महाराज उस माया को अपनी गोद में लिए हुए वहां पर बैठे हुए हैं। यशोदा जी को तो पता नहीं है कि कौन हुआ है, और भगवान को पता है, वसुदेव जी को भी पता है। उस माया रूपी बालिका को लेकर वसुदेव जी महाराज जेल खाने में बैठे हुए हैं।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव,
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव,
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव,
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव,
हे नाथ नारायण वासुदेव,
नाथ नारायण वासुदेव,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव,
हे नाथ नारायण वासुदेव।
भगवान श्री कृष्ण का अवतार समस्त प्रेमी जनों को प्रेम प्रदान करने के लिए हुआ, और आने वाले समय के लोगों के लिए भी भगवान की यह पावन गाथा आनंदित करने वाली रहेगी। दशम स्कंद के सुनने के लिए राजा परीक्षित जिस ढंग से सुखदेव जी महाराज के सामने अपने विचार रख रहे हैं, जिज्ञासा व्यक्त की है, उनके इस भाव को समझते हुए सुखदेव जी महाराज ने भगवान की बहुत सी लीलाओं को बड़े विस्तार के साथ कहा है। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनने वाला साक्षात कृष्ण स्वरूप है, श्री कृष्ण के धाम में जाने योग्य है, और वह श्री कृष्ण का प्रिय पात्र होता है। भगवान की कथाओं में कितना रस है, भगवान की कथाओं में कितना माधुर्य है, भगवान की कथाओं में कितनी दिव्यता है, यह भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के सुनने से हमको मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिव्य है, वे वसुदेव जी के सामने प्रकट हुए और देखते देखते ही वे छोटे बालक बन गए। वसुदेव जी उस बालक को लेकर नंद जी के यहाँ रख आए और यशोदा के यहाँ जन्म लेने वाली उस माया को उठाकर वे कंस के जेल खाने में आ गए। सब दरवाजे पूर्व की तरह से बंद हो गए, किसी को भी ये मालूम नहीं चला कि ये दरवाजे खुल भी गए थे और उसके बाद बंद हुए हैं। सबको यही ज्ञान था कि दरवाजे पहले से ही बंद हैं। अब उसके बाद की कथा श्री सुखदेव जी महाराज के शब्दों से कही जा रही है। आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि भगवान श्री कृष्ण के इन लीलाओं को बड़े प्रेम से ध्यान से सुनेंगे। जब जेल खाने के सारे दरवाजे पहले की तरह से आवृत हो गए तो उसके बाद जो माया यशोदा के यहां से लाई गई थी उसने रोना चालू किया और जो ही बाल ध्वनि द्वारपालों ने जेल के लोगों ने सुनी तो उनमें से बहुत से आदमी दौड़े दौड़े गए और भोजराज कंस को ये खबर दे दी कि देवकी देवकी का आठवां गर्भ हो चुका है, देवकी के यहाँ आठवें गर्भ ने जन्म ले लिया है। वह तत्काल अपने आसन से उठा। उस समय में उसका मन घबराया हुआ था, कालोयम, कहीं ये मेरा काल ही तो नहीं है। वह तत्काल कैद खाने में पहुंचा और वह सीधा अपनी बहन के पास में गया। उसकी भ्रिकुटी तनी हुई थी, केस बिखरे हुए थे, हाथ में तलवार थी, वह क्रोधाविष्ट था। उस समय में जो ही कंस अपनी बहन के पास पहुंचा है, बहन ने कहा कि भैया ये तो एक छोटी बच्ची है, यह स्त्री जाति में जन्म लिए है, भैया कंस इसे मत मारो, मेरे तुमने बहुत से बेटा पहले मार दिए हैं, एक बेटी तो कम से कम रहने दो। देखो ये बहुत छोटी बालिका है, स्त्री जाति पर तो यूं ही दया करनी चाहिए, उसमें भी ये बालिका है। हे भैया ये मेरी अंतिम संतान है, कम से कम इसे तो मेरे पास सुरक्षित रहने दो। बिचारी देवकी चीख करके रोने लग गई और बार बार अपने भाई से निवेदन कर रही थी, लेकिन वो दुष्ट कब ये बात मानता। हस्ताद आच्छिच्छिदे खले है, तत्काल द्रौपदी के हाथ से उस छोटी बच्ची को उसने छीन लिया और उसके पैर पकड़ करके और आसमान में घुमा करके सामने एक शिला रखी हुई थी उसके ऊपर ज्यों ही वो पटकने लगा त्यों ही उसके हाथ से छूट करके वो देवी आकाश में गई और आकाश में जाकर उसने अपना दिव्य रूप बताया। दिव्य रूप में उसने कहा कि अरे कंस, किम मया हतया मंद, मूर्ख मुझे मारने से क्या होगा, तुम ऐसा समझते हो कि देवकी के आठवें गर्भ के मारने के बाद मृत्यु टल जाएगी। नहीं नहीं, संसार में आज तक किसी की मृत्यु नहीं टली है, तुम्हारी मृत्यु तो पहले ही पैदा हो चुकी है, तुम्हारा शत्रु कहीं पैदा हो चुका है, बालकों को वृथा मत मारो और अपनी मृत्यु को याद करो। आग फाड़ करके वह कंस देखने लगा कि ये तो बड़ी दिव्य सुंदरी देवी है, बड़े सुंदर माला पहन रखी है, तरह तरह के आभरणों से वो विभूषित है, 8 इसकी भुजा है, धनुष बाण और शूल ढाल तलवार शंख चक्र गदा पद्म इसने धारण किए हैं, बड़े बड़े सिद्ध चारण गंधर्व अप्सराएं किन्नर उरग इनकी स्तुति कर रहे हैं। तो वो देखने लगा, बड़े आश्चर्य में गिर गया और तत्काल ही वो देवी वहां अदृश्य हो गई। जब वो अदृश्य हो गई तो फिर वह कंस बड़ा लज्जित हुआ। कंस ने देवकी और वसुदेव के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। कंस प्रार्थना करने लगा कि हे बहन और हे मेरी बहनोई, मैंने आप दोनों के साथ बड़ा भारी अन्याय किया है। देवोपम सुंदर बालकों का वध करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। ब्रह्म हत्या के समान पाप करने वाला मैं पुरुषादेव राक्षस के समान हूं, न जाने कहां किस लोक में जाऊंगा। देखो बहन, कभी कभी देवता लोग भी झूठ बोल देते हैं। उन्होंने कहा था कि 8वां लड़का होगा उससे मृत्यु होगी, तो मैंने देखा कि लड़का हो चाहे लड़की हो मुझे कोई मार न दे, मैंने तुम्हारे बालकों को मार दिया, मेरे द्वारा बड़ा भारी अन्याय हुआ है, अब इसे आप क्षमा कर दीजिए। महाशोचतम महाभागव, आप लोग दोनों ही बड़े ज्ञानी हो, आपके दिल में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हमारे पुत्रों को कंस ने मार दिया है। मैं मारने वाला होता कौन हूँ बहन, सब अपने अपने प्रारब्ध से यहाँ आते हैं, अपने भाग्य से अपनी आयु पूरी करके चले जाते हैं, परंतु सारे प्राणियों में एक आत्मा रहती है, वो आत्मा कभी नहीं मरती है। इस प्रकार से जीवन में तरह तरह के संकटों से वे ही आदमी दुखी होते हैं जो अपनी आत्मा को नहीं पहचानते हैं। इसलिए आपके मन में कोई शोक नहीं होना चाहिए। स्वकृतम विन्दते अवशः, क्या बताऊं, मैं स्वयं भी इसी प्रकार से अपने प्रारब्ध के अधीन होकर कष्ट पा रहा हूं। आप लोग कोई चिंता मत करो, ये मारने वाले हैं और ये मरने वाले हैं, ये भेद अभिमानियों को होता है, इसलिए आप मेरे अपराधों को क्षमा करो और अपने चित्त से हमको क्षमा कर दो। ऐसा कहकर के वो रोने लगा और उन दोनों के बंधन उन्होंने हटा दिए। वसुदेव जी और देवकी जी दोनों के दोनों बंधन रहित हो गए। उसके बाद वसुदेव जी ने कंस से कहा कि हे महाभाग, बात तो यही है, अज्ञान के द्वारा मनुष्य की बुद्धि विकृत हो जाती है और तभी ये अपना है, ये पराया है, ये मैं हूं और ये मेरा है, ऐसा भेद होता है। इसी भेद बुद्धि के कारण हर्ष शोक भय द्वेष लोभ मोह आदि विकार पैदा होते हैं। कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, अब उसके ऊपर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वसुदेव और देवकी अपने घर पर आ गए। कंस बड़ा लज्जित होकर अपने महल में चला गया। कंस जब वहां पहुंचा है, उस समय में कंस ने अपने साथियों को बुलाया, तेभ्य आचष्ट, और उन सबको बता दिया कि क्या क्या मेरे साथ इस जेल खाने में हुआ है। तो उसके साथी कहने लगे, महाराज भोजराज, आप क्यों विचार करते हो, यदि कोई आपका शत्रु कहीं जन्म ले चुका है तो आप चिंता मत करो, अब तक जितने बालक हुए हैं जिनके दांत आ गए हैं अथवा जिनके दांत नहीं आए उन सबको हम मार देंगे। क्या हम बालकों को भी नहीं मार सकते, हमने बड़ा बड़ा युद्ध किया है, इंद्रादि देवता भी हमारे नाम से कांपते हैं, तो छोटे छोटे बालकों के मारने में हमारे लिए कोई कठिनाई की बात नहीं है। और हे भोजराज आप देवताओं से भी मत डरो, ये देवता हमारा कुछ नहीं कर सकते। देखो ये देवता हरदम उस विष्णु के सामने हाथ रहते हैं जो बैकुंठ में जाकर छिप जाता है, और वनवासी शंकर के सामने जाकर शरण स्वीकार करते हैं जो हमारे सामने आकर ठहर भी नहीं सकता है। वो ब्रह्मा तो बेचारा तपस्या में लगा हुआ और सृष्टि के बनाने में लगा हुआ है, उसके पास कहाँ इतनी ताकत है। इसलिए देवताओं से मत डरो, ब्रह्मा विष्णु और शंकर से भी मत डरो, पर एक बात है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में कोई बीमारी आए और उस बीमारी की हम उपेक्षा कर दें तो वो बीमारी हमारे लिए आगे खतरा बन सकती है। इसी प्रकार से ज्ञानियों ने अपने इंद्रिय समुदाय पर कभी विश्वास नहीं किया है, सदा वे उससे सावधान रहे हैं, ऐसे आप भी सावधान रहो। जहां जहां विष्णु का पोषक तत्व विद्यमान है उन सबको नष्ट कर दो। देखो ये सनातन धर्म है, ये विष्णु को आनंदित करने वाला है, विष्णु को इस सनातन धर्म से प्राण मिलते हैं, शक्ति मिलती है, और इस सनातन धर्म की रक्षा ब्राह्मण करते हैं, वेद करते हैं, गाय करती है, यज्ञ करते हैं। तो आप यज्ञों को मत होने दो, ब्राह्मणों को नष्ट कर दो, गायों को नष्ट कर दो, और वेद की परंपराओं को मत होने दो, अपने आप वो विष्णु शक्तिहीन हो जाएगा, देवता भी शक्तिहीन हो जाएंगे, फिर हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। और छोटे छोटे बालकों को मार देने के कारण कोई भी यदि आपका मारने वाला शत्रु पैदा भी हो गया है तो वह भी मर जाएगा। ऐसे उन दुष्ट मंत्रियों की सलाह कंस ने मान ली, और ब्रह्म हिंसाम हितम मैंने, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कितने आश्चर्य की बात है कि ब्राह्मणों की हिंसा भी उसने अपने लिए हितकारक मान ली। सच बात है, जो आदमी जहर खा करके भी हंसता है उसकी क्या दशा होती है, ऐसे ही कंस की बुरी दशा हुई। आयु श्रियम यशो धर्मम, जो महापुरुषों का अपमान करता है उसकी आयु लक्ष्मी यश धर्म और ऊंचे लोक भोग सब उसके समाप्त हो जाते हैं। अब ये राक्षस थे, ये कंस के जो मंत्री थे, तरह तरह का रूप धारण करने वाले, वे व्रज में चले गए और बालकों को तंग करने के लिए, बालकों को मारने के लिए अपनी तरफ से उद्योग कर रहे हैं। कंस ने ये सोच लिया कि इन हमारे मंत्रियों के द्वारा, हमारे मित्रों के द्वारा निश्चित ही बालकों का नाश हो जाने पर हमारा जो शत्रु पैदा हुआ है उसका भी नाश हो जाएगा और मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊंगा। इधर जब नंद बाबा को मालूम चला कि हमारे यहाँ बालक हुआ है तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदस्वादमय उत्पन्ने, नंद जी महाराज अपने बालक के उत्पन्न होने पर एक बहुत बड़ा उत्सव करने लगे। अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को बुलाए, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाए, स्नान वगैरह करके अलंकृत होकर के उन्होंने स्वस्ति वाचन करवाया बालक का। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा पितरों का और देवताओं का पूजन करवाया, और उस समय में लाखों गायें ब्राह्मणों को दान में दी, और बड़े बड़े तिल के पहाड़ थे वे भी ब्राह्मणों को दान में दिए। देखो परीक्षित, हमारे यहाँ वस्तुओं की, समय की, स्वभाव की कई प्रकार से शुद्धि होती है। कोई वस्तु समय से शुद्ध होती है, शरीर आदि स्नान से शुद्ध होते हैं, संस्कारों से हमारा स्वभाव शुद्ध होता है, तपस्या से हमारा अंतःकरण निर्मल होता है, यज्ञ से हमारा समय और हमारी वस्तु पवित्र होती है, और शुद्ध्यन्ति दानै संतुष्टिया, और दान देने से हमारे वस्तुओं में कोई अपवित्रता आती है वो शुद्ध हो जाती है। तरह तरह के ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए, गाने वालों ने, बजाने वालों ने नंद जी के यहाँ आकर तरह तरह से वाद्य यंत्र बजाए, नगारे बजाए, धुंधभियां बजाई, सबके मन में बड़ा उल्लास था। सारा का सारा व्रज उस समय में समृष्ट संसिक्त द्वारा जिन गृहांतर है, सारे के सारे ब्रजवासियों ने अपने अपने घरों को सजाया, घर को साफ किया, ऊपर पताकाएं लगवाई, और घर के अंदर जगह जगह माला और पुष्प लगाए, गायों को सजाया, बैलों को सजाया, बछड़ों को सजाया, हरिद्रा के साथ, हल्दी के साथ तेल मिला करके तरह तरह से उनके ऊपर चित्र बनाए, मालाएं पहनाई, और वहां गोपे गोप थे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके, माला पहन करके, अलंकार पहन करके, झुंड के झुंड अपने हाथ में तरह तरह की बधाई की सामग्रियां लेकर नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचते हैं। इधर गोपियां भी जब ये सुनती है कि यशोदाया सुतोद्भवम, यशोदा के एक लड़का पैदा हुआ है, तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपने चोटियों में फूल लगा लगाकर तरह तरह से अलंकार धारण करके इतने वेग से अपने घर से रवाना हुई है कि उनको फूल गिरने का ज्ञान नहीं, उनको अपने कपड़ों का ज्ञान नहीं, उनके अलंकार कहीं गिर गए, आभूषण कहीं गिर गए, इस बात का भी उनको ज्ञान नहीं। इस प्रकार से बड़ी तेजी से, बड़े संभ्रम से वे नंद जी के उस घर पर पहुंचते हैं जहां पहले से ही गोप लोग पहुंचे हुए हैं। अब वे गोपियां पहुंची और जो ही उस छोटे से नन्हे मुन्ने बालक को देखा, सबके मुंह से एक ही आवाज निकली, चिरम पाही, ये चिरकाल तक जीवित रहे, ऐसे कृष्ण को सबने आशीर्वाद दिया। फिर वहां तरह तरह से वाद्य यंत्र बजाए गए, कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्य व्रज मागते। कितना उन लोगों के मन में उत्साह है, नंद जी के व्रज में जब भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण विश्व के स्वामी है, अनंत है, वे आज नंद जी के व्रज के अंदर पधारे हैं। वे गोप लोग परस्पर में दही है, घी है और दूध है, मक्खन है, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। महामना नंद जी महाराज बड़ी उदारता के साथ में ब्राह्मणों को और दूसरे याचकों को तरह तरह से अलंकार, वस्त्र, गाय, ये सब दे रहे हैं। सूतों को और मागदों को खुले हाथ से भी आज वस्तुएं लुटा रहे हैं। नंद जी के आज किसी प्रकार से खुशी की कोई कमी नहीं है। ये सब कुछ नंद जी ने क्यों किया कि विष्णु आराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च, विष्णु भगवान की आराधना के लिए और हमारा बेटा इसका कल्याण हो और इसका अभ्युदय हो, ऐसी भावना रख करके नंद जी महाराज ने बड़ा भारी दान दिया। वहां बलराम जी की माँ रोहिणी भी वहां नंद जी के उस घर के अंदर तरह तरह से कार्य कर रही थी। व्यचरा दिव्य वासस्रक कंठा भरण भूषिता, अच्छे कपड़े पहनी हुई आवश्यक कार्यों में लगी हुई थी। सच पूछा जाए, जिस दिन भगवान यहाँ पधारे ब्रज में, उस दिन से लक्ष्मी जी भी यहाँ आ गई, भगवान के साथ में जो रिद्धि सिद्धियां रहती है वो भी वहां आ गई, और भगवान के वहां निवास करने के कारण से आज ये व्रज बड़े आनंद के साथ में भगवान के जन्म का उत्सव मना रहा है। रमा क्रीडम अभू नृप, और वो लक्ष्मी जी का क्रीडा स्थल हो गया। इस प्रकार से सब लोग बड़े आनंद के साथ नंद जी का महोत्सव मना रहे हैं। अब उसी नंद महोत्सव के प्रतीक के रूप में जरा अपने भी नंद महोत्सव मना लेते हैं और नंद जी के आनंद की कल्पना कर सकते हैं। राव
बात सुनी आई हो, एक नई बात आए हो, एक नई बात सुनी आई हो, एक नई बात सुनाए रानी यशोदन घोटा जायो, रानी यशोदन घोटा जायो, रानी यशोदन घोटा जायो, रानी यशोदन घोटा जायो, घर घर बजत बधाई हाँ, घर घर बजत बधाई हो, एक नई बात सुनी आई हो, एक नई हो, एक नई बात सुनी आई हो, एक द्वारे भीर गोप गोपिन की, द्वारे भीर आ हो एक नई बात सुने आए हो एक नई बात सुने आए हाँ अति आनंद होते गोकुल में अति आनंद होते गोकुल में अति आनंद एक नई बात सुने आए हो 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 एक नई बात सुने आए हाँ नाचत गावत तरुण वृद्ध नाचत तरुण वृद्ध और बालक ओरस की चमचाई हाँ ओरस की चमचाई हाँ ओरस की चमचाई हाँ ओरस की चमचाई हाँ एक नई बात एक नई बात सुने आए हो एक नई बात सुने आई 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 हो एक नई बात हाँ सूरदास स्वामी सुख सागर
सूरदास स्वामी सुख सागर
सूरदास स्वामी सुख सागर
सूरदास स्वामी सुख सागर
सुंदर श्याम कन्हाई हाँ सुंदर श्याम कन्हाई
मंडल को देख रहे हो ना कितनी अपार भीड़ है ये कहा जा रहे हैं बाबा नंद के यहाँ जा रहे हैं क्योंकि लाला की बधाई सुन आए सब गोपगण लाला की बधाई सुन आए सब गोपगण जय जय उचारे गावे दुंदवी दे
ताल की
ये देखो
ओ दुंदवी बज रही है
और भैया ये तो ब्रजमंडल की बात है आकाश की ओर दृष्टि करो देवांगना कैसी दृष्टि गोचर है रही है ब्रह्माणी इंद्राणी रुद्राणी आई जुर ठाड़ी गीत गावे नह मंडल रसाल की हाँ देवांगनाएं और नाग नर किन्नर सब वोरे से फिरत रहे आरती उतारे ले बलैया नग लाल की ब्रज में ब्रज चंद भयो यशोदा के फरजंद भयो आज नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की
और भैया इतना ही नहीं पूत सपूत जन्यो यशोदा ये पूत सपूत जन्यो यशोदा इतनी सुन के वसुधा सब दौरी देवन मन आनंद भयो मिल गावत धावत मंगल गौरी
मंगल गौरी
नंद कछु इतनो जो दियो कितनो दियो नंद कछु इतनो जो दियो वह घन श्याम कुबेरऊ की मत बोरी मोह देखत ब्रज ही लुटाए दियो ना बची बछिया छचिया ना पिछोरी।
भैया देखो आज ब्रज में कितनो आनंद है रहो है, सबरे ब्रज मंडल में अति ही शुद्ध देश सरल सुधाम अति सरल सुखारी है।
हाँ।
भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी सो दिन मध्य प्रगटो श्री नंद जू के रूप को उजारी है। ये मंगल के साज सब पात्रन में भर राखे और चली ब्रजवाल ही है मोद सुखकारी है। मन में उछंग भरी और गावत बधाई सबे नंद के भवन आज भीड़ भरी
भारी है।
देखो कैसी अपार भीड़
है। अपार नोखो जायो लेना में बेदन में वेदन में सुन आई हो पुराण में सुन आई मैं वेदन में सुन आई
हो पुराण में सुन आई
हो लोका जायो लाल नाम वेदन में सुन आई
हो लोका जायो लाल नाम वेदन में सुन आई
हरि मथुरा में यन जन्म लियो है
मथुरा में यन जन्म लियो है
मथुरा में लाला जन्म लियो है
मथुरा में लाला जन्म लियो है
अर र र र गोकुल में झूले पाले
ना में दे जन में सुन आई अरे गोकुल में झूले पाले ना में दे जन में
वसुदेव चले गोकुल को
ले वसुदेव चले गोकुल को
ले वसुदेव चले गोकुल को
ले वसुदेव चले गोकुल को
अर र र र याय मार्ग दे गई जमुना में वेदन में मारग से गई जमुना वेदन में सुन आई अरे
मारग से गई जमुना वेदन में सुन आई
हमें वेदन में सुन आई हो पुराण में सुन आई
मैं वेदन में सुन आई हो पुराण में सुन आई
अरे अनोखो चरण उतर गई यमुना
छुवत चरण उतर गई यमुना
छुवत चरण उतर गई यमुना
छुवत चरण उतर गई यमुना
अर र र र सब जल है गयो रे घूट नाम वेदन में सुन आई सब जल रे गयो रे घूट
नाम वेदन में सुन आई
ओ अनोखो जायो लेना में सुन आई
हो अनोखो जायो लेना
को बन्यो पालनो
काहे को या को बन्यो पालनो
काहे को या को बन्यो पालनो
काहे को या को बन्यो पालनो
अरे रे 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 काहे के लागे फूंदे ना मेरे दन में सुन आई
हो काहे के लागे
रतन जटितिया को बन्यो पालनो
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 अरे रे 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 रेशम के लागे फूंदे ना मेरे दन में सुन आई
ओ रेशम के लागे
करत है
नंद बाबा गौदान करत है
नंद बाबा गौदान करत है
नंद बाबा गौदान करत है
अरे रे 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 बधाई बाजे आंगना में
बधाई
हो बधाई
बाजे आंगना में बेदन में सुन आई
हो मैं बेदन में हो पुराणन में सुन आई
बेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई
को जायो नाम बेदन में सुन आई
हो अनोखो जायो नाम बेदन में सुन आई
हा चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि शुभ घड़ी
आइए
लाला की खुशी हमने
चलो भैया बाबा बधाई लुटा रहे हैं अपने भवन के मुख्य द्वार पे हाँ। वहीं चलो बधाई गान है गये
हाँ। अरे भैया बात ऐसी है आज देखो कहाँ कहाँ आनंद है रहे है जसोदा मैया ने जो लाला जायो है नंद बाबा के घर पे कितनी अपार भीड़ है रही है ये भूर भवस्व है महर जन कपह सत्य हु लो यही धुन छाई ब्रजराज के बधायो है अतल बितल सुतल तलातल रसातल और पाताल हूँ मैं आज शेष गुण गायो है आज ब्रजमंडल हमारो आज ये ब्रजमंडल गौ लोक सोहु अधिक दिखे और वेदवंती रूपधार नंद कौर आयो है। भने कब नंद आज आनंद ब्रह्मांड हुके और यशोदा महारानी ने पूत ऐसो
भैया। एक बात मैं बताऊं, लाला की हैवे की प्रसन्नता में ये ब्रजमंडल और ब्रजवासी कहाँ बन गयो?
कहाँ बन गयो
भैया?
बर्फी सी ब्रज नारी बनी भैया, बर्फी सी ब्रज नारी बनी और गुंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला और पीड़ा ते प्यारे बड़े बल देव जू रस खीर सी रोहणी रूप रसाला।
और भैया ये तो मिष्ठान की व्यवस्था,
हाँ नमकीन है कछु?
अब नमकीन को नंबर आएगा भैया?
हाँ
हे नमकीन नंद मही पुजू,
नंद बाबा नमकीन दिखवे लगे हैं भैया।
नंद बाबा नमकीन दिखवे लगे? हाँ।
अरे वाह। हे नमकीन ये नंद मही पुजू गोकुल गोप भय गरम मसाला अर जायो है श्याम जलेबी असोदाने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला भगवान के लाला की।
वास्तव में साची बात कही है भैया, यशोदा मैया ने ऐसो विलक्षण लाला जायो है कि जाकी बधाई ब्रजमंडल में ही नहीं अभी तो तीनों लोकन में मनाई जा रही है। बाजत बधाई धुन छाई तहु लोकन में, आज आंगन में मेहर के नाचे सुरताल की, सुत को जन्म सुन देवन मन आनंद भयो और गोपी नवेली नाचे हाल काल की। और यशोदा बधाई रही मोतीन के थार भर साल और दुसाला दीनी सारी रंग लाल की। और ब्रजगोपी कहा कह रही है?
कहा कह रही है
यशोदा मैया को बधाई में? कहा कह रही है?
कहा कह रही है
चिर जीवो कोटि वर्ष तेरा सुत यशोदा आज नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
भैया मैंने सुनी है कि लाला की खुशी में बाबा आज बहुत कछु लुटाए रहे हो है।
मेरी इच्छा है का कछु लेवे की?
अरे मेरी इच्छा तो बहुत कछु लेवे की है बाबा, दे दे जब है।
खोल ले तू अब।
खोल दूं? हाँ। तो सुन, पेड़ान की नीम भर बर्फी की भीत धर। मोकू कहा चाहिए? पेड़ान की नीम भर बर्फी की भीत धर और रबड़ी के गारी सुन धर के चिनाए दे।
हाँ।
पूड़ीन के बिछैया, पूड़ीन के बिछैया मोहन भोग के गलीचा, खजना फेनन की किवार तामे लौंग इलायची जड़ा दे। हाँ इतना ही नहीं, मिश्री की तोफ, मिश्री की तोफ जामे बूरे की बारूद भर और गोल गोल लड्डू धर धर के चलाए दे। कहे कभी राय तेरी साहिली अपार एक ऐसो किलो बनाए हम ग्वालन को लुटाए दे।
अरे भैया ये तो सब खाए को ही सौदा रहे हो तो?
भैया हमको तो खाए को ही चाहिए
भैया। हाँ। बड़ो ही छलिया है तू। हाँ। और भैया
हे चलो नंद जू के द्वारे हो द्वारे
लाला के दर्शन करिया में।
हे चलो नंद जू के द्वारे
हो द्वारे
देखिए पीछे पीछे सब पीछे पीछे सब मिलके बोले हे नी चलो नंद जू के द्वार हो द्वार लाला के दर्शन करिया में। हे
चलो नंद के द्वार हो द्वार लाला के दर्शन करिया में।
हे नी यशोदा
यशोदा ला जायो है
हे
यशोदा ला।
रज घर घर आनंद छायो है,
भयो सबहिन को मन भायो है,
भयो सबहिन को मन भायो है,
मिल जावो मंगल चार ओ चार
बधाइए,
करिया में
मिल जावो मंगल चार ओ चार, लाला की दर्शन करिया में
जन्म